श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध अध्याय 7 शिवजी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। भगवान अजीत ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। दैत्यों के नेताओं ने पूछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे, जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतएव वे मुस्काने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। हे पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका कोई आधार न था, अतएव असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। क्योंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अतएव देवता तथा असुर गण निराश थे और उनके चेहरे कुमलाए से प्रतीत होते थे। भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 800,000 मील तक फैला हुआ था। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे, तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे, उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी, जिससे पोलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन होते गए। क्योंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए। किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगे, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थी। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे, तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और वहेल, समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिडिंगल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जब इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे सर्वप्रथम हलाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। हे राजन, जब वह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता भगवान समेत शिव जी सदाशिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। देवताओं ने शिव जी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रार्थना की। प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बड़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और आप ही उनकी मुक्ति के कारण हैं। अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब आप सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम अपना कर करते हैं। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाशित अचिंत्य निराकार ब्रह्म हैं, जो मूलतः पर ब्रह्म हैं। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक दृष्टि, प्राण, इंद्रियों, पांच तत्वों, तीन गुणों तथा महत्तत्व के मूल कारण हैं। आप नित्य काल, संकल्प तथा सत्य और रित कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षरों अ, उ तथा म वाले ओम शब्द के आश्रय हैं। हे समस्त लोकों के पिता, विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल हैं, आप निखिल देव रूप हैं, नित्य काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं और जल का स्वामी वरुण आपकी जीभ है। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चंद्र देव आपका मन है, उच्चतर लोक मंडल आपका सिर है। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां, लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के सात कोश हैं और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। हे प्रभु, पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके पांच मुखों के गोतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक दृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तथा तमो आपके तीन नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा। हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है, तो सारी सृष्टि जल कर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं, तो वे आपको ब्रह्मवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको शमशान में घूमते हुए देखते हैं, तो ब्रह्मवश वे आपको अत्यंत निरीक्षण तथा ईर्षालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज हैं, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता गण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं, अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। श्री लशुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न है, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगनी सती से इस प्रकार कहा। शिवजी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित आश्रितों की रक्षा करे। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में ढालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। श्री लशुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिवजी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिवजी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिवजी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। इस कार्य को सुनकर भवानी, दक्ष, कन्या, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिवजी के इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। जब शिवजी विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिर कर छितर गया, उसे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिवजी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।